परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लेव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इन दिनों हम लय व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 24 का अध्ययन किया था और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 25 से आरंभ करेंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में परमेश्वर का कैलेंडर देखते देखते हम बीच में मिलाप वाले तंबू की व्यवस्था और ईश निंदा के दंड के बारे में देखने लगे थे। अब फिर से हम अपना ध्यान परमेश्वर के सामाजिक एवं धार्मिक आदेशों की ओर लगाएंगे। मूसा की व्यवस्था इसराइलियों के लिए ही नहीं वरन देश के लिए भी थी जहां उन्हें निवास करना था, जो फलिस्तीन देश है। इस अध्याय में इन्हीं विधि विधानों पर बल दिया गया है और ये नियम जंगल में लागू नहीं किए जा सकते थे। उनका पालन करना तभी संभव था जब इसराइल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देश शब्द बार बार आएगा। जब तुम उस देश में प्रवेश करो, यहोवा के लिए विश्राम मिला करे, अंतिम वाक्यांश 10 बार आया है। इस अध्याय की चर्चा का मुख्य केंद्र है वह देश जो परमेश्वर उन्हें देगा। अतः मूसा की व्यवस्था विशेष जाति वरन विशेष स्थान फलिस्तीन देश के लिए थी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था कृषि संबंधित प्रजा के लिए भी थी। आप लय व्यवस्था या संपूर्ण बाइबल में 7 की संख्या का उत्तरोत्तर उल्लेख देखेंगे। यह संख्या परिपूर्णता को दर्शाती है और इसका अभिप्राय प्रत्येक संदर्भ में सिद्धता से तो नहीं परंतु परिपूर्णता से है। लय व्यवस्था की पुस्तक में संख्या 7 का संबंध प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त संख्या 7 से है। दोनों ही पुस्तकों में इसका प्रयोग रचनात्मक रूप में किया गया है। समय भी दोनों परिपक्षों में नागरिक धर्म संबंधित घटनाओं में 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7वां दिन, 7वां सप्ताह, 7वां महीना, 7वां वर्ष। संपूर्ण कैलेंडर 7 की संख्या पर आधारित था और लय व्यवस्था भी 7 के चक्र पर चलती थी। प्रकाशित वाक्य में यह फिर प्रकट होता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए नहीं कि वह थक गया था परंतु इसलिए कि उसने सृष्टि के कार्य दिन में पूरा कर लिए थे और शेष कोई काम नहीं रहा था। सप्त का दिन समय की गणना करने की आधारभूत इकाई थी और समय का विस्तार सप्त से ही आरंभ होता था। आइए अब हम इसकी रूपरेखा को देखें। पहला, 7वां वर्ष पद 1 से 7, दूसरा जुबली वर्ष पद 8 से 24, तीसरा भू संपदा का छुड़ाया जाना पद 25 से 34, चौथा किसी व्यक्ति का छुड़ाया जाना पद 35 से 55। आइए हम देखते हैं 7वां वर्ष। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह सियोन पर्वत का दृश्य है परंतु यह लागू तब होगा जब इसराइल प्रतिज्ञा के देश में बस जाएंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय के 1 में परमेश्वर मिलाप वाले तंबू से बातें कर रहा था। हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 25 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इसराइलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। यह बड़ी विचित्र बात है कि विश्राम की व्यवस्था मनुष्य और भूमि दोनों के लिए थी। मनुष्य के लिए प्रत्येक 7वां दिन विश्राम दिवस था, जबकि भूमि के लिए प्रत्येक 7वां वर्ष विश्राम वर्ष था। 7वां दिन का संदर्भ परमेश्वर के सृष्टि कार्य से है जब उसने अपने कार्य को पूरा करके विश्राम किया था। शब्द का अर्थ है विश्राम और इसका परम अर्थ है उद्धार का विश्राम। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाय अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इन पदों में विश्राम का अर्थ है सप्त का दिन रखना। आज वैज्ञानिक कृषि के युग में भी भूमि को सातवें वर्ष विश्राम देना लाभकारी देखा गया है। यह कृषकों के लिए भी विश्राम का समय होता है, वे इस समय अन्य आवश्यक कार्य को कर सकते हैं। भूमि के विश्राम का यह सातवां वर्ष इसराइल को लालच से मुक्त कराने के लिए था। सत्य तो यह है कि इसराइल द्वारा विश्राम वर्ष के नियम का पालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप ही उन्हें बेबीलोन के दासत्व में जाना पड़ा था। इसे हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 21 पद में पाते हैं। उन्होंने 490 वर्षों में 70 विश्राम वर्ष का उल्लंघन किया था, जिसके दंड स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें 70 वर्ष के लिए बाबुल के दासत्व में रखा था। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय के 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6वें वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे, उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छांटना। मित्र, हम यहाँ पर देखते हैं और इसे स्पष्ट भी होता है कि विश्राम वर्ष भूमि से संबंधित था। वे 6 वर्ष तक खेती कर सकते थे और अपनी दाख की बारियों को 6 वर्ष तक उगा सकते थे, परंतु 7वें वर्ष उन्हें भूमि में बीज नहीं डालना था और फल नहीं लेना था। पृथ्वी पर और मनुष्य पर श्राप था कि वह अपने माथे के पसीने से रोटी उपजाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सृष्टि श्राप मुक्त हो जाएगी, जिसे हम रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 20 से 22 पद, यशायाह 35 अध्याय के 1 और 2 पद में पढ़ सकते हैं। विश्राम वर्ष परमेश्वर का एक अति उत्तम कृषि संबंधित नियम है। परमेश्वर कृषि विज्ञान का ज्ञाता है। जहां जहां यह नियम लागू नहीं किया गया, वहां वहां भूमि को महान हानि पहुंची है। हम लय व्यवस्था 25 उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा और भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि ही की उपज से होगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के पालन करने के प्रतिफल में कैसा प्रावधान करता है। भूमि की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि प्रतिवर्ष खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। अब्राहम के युग में फरात नदी के भूभाग में अनाज स्वतः ही उगता था, वहाँ खेती करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसराइल में भूमि अपने स्वामी, उसके सेवकों और परदेशियों के लिए पर्याप्त भोजन उत्पन्न करती थी। मवेशी भी भूमि की उपज से पूरी तरह पोषित होते थे और हृष्ट पुष्ट थे। परमेश्वर मनुष्य और पशु, इसराइल और परदेशी सबकी सुधि रखता था और सबको परिपूर्ण भोजन प्राप्त था। उन्हें उपज से व्यापार भी करना मना था। मित्रों, हम देखते हैं कि अनेक वर्ष पूर्व जब भूमि का विभाजन नहीं किया गया था, तब मेरा पड़ोसी जो बड़ा सज्जन पुरुष था, उसका अंगूर का एक बगीचा था। वह प्रत्येक फसल पर मेरे लिए टोकरे भर कर अंगूर लाता था। वह उदार स्वभाव का मनुष्य था। वह ऐसी कलीसिया से संबंध रखता था जहां सप्त के दिन का बड़ा सख्ती के साथ पालन किया जाता था। अतः वह मुझे सदैव सप्त के दिवस के लिए बाध्य करता था। मैं उससे कहता कि मैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और सप्ताह के प्रत्येक दिन सप्त का पालन करता हूँ। मैं उसे समझाने की प्रयत्न कर रहा था कि सप्त का अर्थ है विश्राम और हम उद्धार के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हम कर्मों से मुक्ति पाकर मसीह यीशु में आस्था रखते हैं, जो प्रत्येक दिन को हमारे लिए विश्राम का दिन बना देता है। मसीह यीशु में विश्राम का दिन है। उसे यह बात स्वीकार्य नहीं था, अतः वह पूछता, क्या आप मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं? क्या आप इसराइल के अनुसार सप्त का दिन मानते हैं? उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह इसका पालन करता था। मैंने उसे लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय से दिखाया कि इसराइल में केवल सप्त का दिन ही नहीं था, सप्त वर्ष भी था। उस वर्ष दरिद्र जन आपके अंगूर के खेत में जाकर अंगूर एकत्र कर सकते थे। मैंने उससे पूछा कि वह मुझे वह विश्राम का वर्ष बता दे तो मैं टोकरे लेकर उसके खेत में पहुंच जाऊंगा। वह उत्तर देता, आप मेरी अनुमति के बिना खेत में मत जाएं। वह मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था, वह केवल उसका एक नियम पूरा कर रहा था। वह न तो विश्राम वर्ष मानता था और न ही जुबली वर्ष। परमेश्वर वास्तव में इसराइल को अनेक पाठ पढ़ा रहा था। वह किसी को भी भूमि के शोषण की अनुमति नहीं देता था, जिसका मुख्य कारण था कि दरिद्र जन वंचित न हो। परमेश्वर भूमि के संरक्षण के साथ साथ गरीबों की भी सुधि लेता था। वह उन्हें सिखा रहा था कि भूमि श्रापित अवश्य है, परंतु एक समय आएगा जब वह बहुतायत की उपज देगी। प्रिय मित्र, आज मनुष्य की चिंता का कारण है जनसंख्या में वृद्धि और भोजन की कमी। परंतु मेरे मित्रों, जिस दिन भूमि का श्राप हट जाएगा उस समय भूमि ऐसी विपुल उपज देगी जैसे आदम के पतन से आज तक नहीं देखी गई। परमेश्वर सब प्रकार की मानवीय आवश्यकता का पूर्ति करता है, अर्थात प्रबंध करता है। परमेश्वर इस पृथ्वी का स्वामी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जुबली वर्ष लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, और सात विश्राम वर्ष अर्थात सात गुना सात वर्ष गिन लेना, सातों विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष का होगा। मित्र, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि सात का गुणाफल है। सात विश्राम वर्ष अर्थात 49 वर्ष का 50वां वर्ष जुबली वर्ष। यह कैलेंडर के समय की बड़ी इकाई थी जिसमें सात वर्ष के सात खंड थे। आज हम भूमि के नाप के अनुसार किराया देकर लेते या देते हैं। परमेश्वर तो यह व्यवस्था पहले से ही कर चुका है। प्रत्येक शताब्दी में दो जुबली वर्ष होते थे। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब सातवें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार करके महाशब्द का नरसिंहा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इसराइल राष्ट्र की विश्राम व्यवस्था की शीर्ष अवस्था थी। यह जुबली वर्ष शेनात हियोमेल होता था। अनेक परिपक्षियों में यह मूसा की व्यवस्था का सबसे अधिक प्रत्याशित एवं आनंददायक समय होता था। तुरही शब्द का उद्गम इब्रानी भाषा के मेढ़े का सिंह से हुआ है। बाइबल में इसका अनुवाद 21 बार जुबली किया गया है और 5 बार मेढ़े का सिंह तथा 1 बार तुरही किया गया है। प्रतिज्ञा के प्रदेश में बस जाने के पश्चात उनका क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था कि यदि तुरही एक बार फूकी जाए तो दान से बारशेबा तक उसका सुनाई देना संभव नहीं था। अतः तर्क के आधार पर यह अति संभव है कि प्रत्येक बस्ती में तुरही एक साथ फूकी जाती होगी कि जुबली के वर्ष की घोषणा की जाए। मेरे विचार में यह मिलाप वाले तंबू या मंदिर में आरंभ होती थी। एक व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर नियुक्त किया जाता था कि उस तुरही को सुनकर अपनी तुरही को फूके और फिर दूसरा का, फिर तीसरा, और इस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश में तुरहियां फूकी जाती थी। हम लय व्यवस्था 25 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। मित्र, उस युग में भूमि पट्टे पर देने की प्रथा थी, परंतु जुबली वर्ष में वह भूमि उसके स्वामी को लौटा दी जाती थी। इस प्रकार परमेश्वर वास्तविक स्वामी के हाथ से उसकी भूमि के चले जाने की रक्षा करता था। 50 वर्ष तक भूमि पर किसी का अधिकार हो सकता था, परंतु जुबली वर्ष में भूमि को पुनः उसके स्वामी या उसकी संतान को लौटाया जाना अनिवार्य था। यदि किसी मनुष्य ने अपने आप को दासत्व में बेच दिया है तो जुबली वर्ष की तुरही के फूके जाते ही वह दास स्वतंत्र होता था, उसकी बेड़ियां खुल जाती थी। आज हमारी स्वतंत्रता ऐसी ही है। तुरही के लिए यूनानी शब्द है केरुकश, और क्रिया शब्द केरुशो का अर्थ है घोषणा करना या संदेश सुनाना। अतः जुबली वर्ष अनुग्रह के इस युग का एक रूप में प्रतीक है कि पाप के दास या शैतान के बंदियों को स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाया जाता है। रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद और 23 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 32 पद में, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पद 36 में वह कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मित्र, जुबली वर्ष में सबको स्वतंत्र कर दिया जाता था, सब पट्टे रद्द कर दिए जाते थे। मेरे मित्र, इसी प्रकार जब आप मसीह के पास आ जाते हैं तब आपके पाप का विषय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने आपकी कीमत का भुगतान कर दिया है। अब आप स्वतंत्र हैं, वह आपको स्वतंत्र करता है। यही बात पौलुस रोमियो और गलातियों की कलीसियाओं को लिखता है। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीव में फिर न जुतो। इस संदर्भ में हमारे प्रभु के वचनों पर ध्यान देना आवश्यक है जो उसने नासरत के आराधनालय में कहे थे। लुकार्ची सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 से 21 पद में हम देखते हैं, उसने भविष्यवक्ता यशायाह से पढ़ा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का अर्थ है घोषणा करना, तुरही फूंकना। क्या यह जुबली वर्ष नहीं कि खेदित मन वालों को ढाड़स बंधाया जाए, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाया जाए और आहत जनों को मुक्ति प्रदान की जाए। मित्रों, संभवतः जुबली वर्ष की संपूर्ण पूर्ति एवं व्यवहारिकता इसराइल के संबंध में सहर्ष वर्षीय राज्य के युग में होगी। मेरा आपको परामर्श है कि आप यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय और 35 और 40 तथा यर्मिया के 23 और मीका के 4 और प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय को एक साथ मिलाकर अवश्य पढ़ें। हम लाइव व्यवस्था 25 उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए, उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। यहाँ पर हम देखते हैं जुबली वर्ष के बाद का वर्ष विश्राम वर्ष होता था। उस वर्ष भूमि पर खेती नहीं की जाती थी, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके लिए उस समय के अनुसार व्यवस्था करेगा, उन्हें उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता रहा है और करता रहेगा। लैबोसा की पुस्तक 25 अध्याय उसके 13 से 24 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल ले लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। मित्र, इस भाग में स्पष्ट निर्देश है कि संपत्ति और संपदा को उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दी जाए। यह एकाधिकार से भूमि को मुक्त कराने और गरीबों की स्थिति बिगड़ने से बचाने की व्यवस्था थी। इस नियम के कारण इसराइल में संतुलन बना हुआ था, यह साम्राज्यवाद नहीं था। परमेश्वर की व्यवस्था थी और भूमि का वास्तविक स्वामी परमेश्वर था और इसराइल उसका उपभोक्ता था। परमेश्वर ने भूमि के 6वें वर्ष आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी, 8वें वर्ष वे खेती कर सकते थे और 7वें वर्ष का उत्पादन खाने के काम में ले सकते थे। परमेश्वर पद 23 में अति स्पष्ट कहता है, भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। हम आगे देखते हैं भू संपदा का छुड़ाया जाना। लेव्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा हुआ है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाएगा। एक जुबली वर्ष से दूसरे जुबली वर्ष के बीच का समय बहुत अधिक होता था। यदि किसी मनुष्य ने जुबली वर्ष के तुरंत बाद ही अपनी भूमि खो दी हो तो अगले जुबली वर्ष तक संभवतः वह जीवित न रहे ताकि अपनी भूमि की उपज का आनंद उठा सके। अतः परमेश्वर ने उसकी भूमि के छुटकारे की वैकल्पिक व्यवस्था भी की थी। यदि उस मनुष्य का कोई निकट संबंधी धनान्य है और वह चाहे तो उसे छुड़ा सकता था, इस प्रकार भूमि पुनः उसके स्वामी को प्राप्त हो सकती थी, परंतु यह उस संबंधी की इच्छा पर निर्भर करता था। यह निकट संबंधी मोक्षक नियम अर्थात छुड़ाने वाला हम रूत की कहानी में देखेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 28 से 34 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु यदि उसकी इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह वाले के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। और लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों, उनको लेविये जब चाहें तब छुड़ाएं। और यदि कोई लेविये अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इसराइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं, और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। प्रिय मित्र, भू संपदा का निवास करने और निर्माण करने का नियम भी था। इन नियमों में टूट फूट और अमूल्यन की भी व्यवस्था की गई थी। लेवियों के लिए नियम अलग थे। अब हम आगे देखते हैं मनुष्य का छुड़ाया जाना। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 35 से 37 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो, तो तू उसको संभालना। वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती न लेना। अपने परमेश्वर का भय माना, जिसे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि परिस्थिति के मारों के लिए परमेश्वर विशेष चिंता करता है। उनकी सहायता करना अनिवार्य था, उनका शोषण वर्जित था। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 38 से 46 पद में आगे लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उसे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे, तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं, उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से जो भी तुम्हारे आस पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो, और वे तुम्हारे भाग ठहरेंगे। और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर दोगे, और वे उनका भाग ठहरेंगे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इसराइली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। यहाँ पर एक गरीब भाई जिसकी बुद्धिमंद हो उसे दास बनाए जाने से सुरक्षित रखना था। उसे श्रमिक की नाई काम दिया जाए, उसे दास नहीं बनाया जाए। उन्हें केवल परदेशियों को ही दास बनाने की अनुमति थी। यह दासत्व के भावी संसार में एक महान कदम था। दासत्व के युग में लोकाचार का आधार मूसा की व्यवस्था थी। हमला व्यवस्था 25 उसके 47 से 55 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री व उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। वह उसका चाचा व चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। वह यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपयों में वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे, और यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए, और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इसराइली मेरे ही दास हैं, वे मिस्र देश में से मेरे ही निकाले हुए दास हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्रों, जुबली वर्ष का यह नियम व्यक्ति विशेष से संबंधित था। पद 10 में हम इसे देख सकते हैं, यदि कोई मनुष्य अपनी संपत्ति बेच दे और उसके बाद परिस्थिति वश स्वयं ही दास स्वरूप बन जाए अर्थात बेच दे, तो उसका निकट संबंधी उसे छुड़ा सकता था। उसका और मेरा निकट संबंधी या छुटकारा देने वाला धनवान है, परंतु हमारे कारण वह गरीब बना जिससे कि वह अपना अनमोल लहू बहाकर हमें छुड़ा ले। उसने हमारे लिए मूल्य नहीं चुकाया, पृथ्वी के लिए भी चुकाया। पृथ्वी भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। यह मोक्षक अर्थात छुटकारा देने वाला या छुटकारा देने का नियम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। वह हमारा निकट संबंधी मोक्षक अर्थात हमारा छुड़ाने वाला है, वह जो हमारे पाप से हमें छुड़ाता है। प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नई बातों को सीखा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है।
सारा